नमस्कार,
दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन, दूसरे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, बालाकोट जैसे ऑपरेशनों से पता चला है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर एरोस्पेस पावर को शत्रु के क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। भारत ने इस वर्ष मार्च में सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षित करके एशियाई बाजारों को पीछे छोड़ा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, जबकि बिहार में नामांकन पत्र कल तक दाखिल किए जा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे।
इस चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को की जाएगी और 2 अप्रैल तक नाम वापस किए जा सकेंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को होगी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया। वे नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद रहे। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजू परवे ने भी रामटेक लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। श्री परवे कांग्रेस उम्मीदवार रश्मि बर्वे के सामने चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने दक्षिण मुंबई से मौजूदा सांसद अरविंद सावंत, ठाणे से राजन विचारे, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से विनायक राउत, उस्मानाबाद से ओम प्रकाश निम्बालकर और परभणी से संजय जाधव को फिर से मौका दिया है। पार्टी ने औरंगाबाद से चंद्रकांत खैरे, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल और रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से अनंत गीते को भी पुनः पार्टी उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले चुनाव में इन निर्वाचन क्षेत्रों से हार गए थे। बिहार में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी आर ने अरुण भारती को जमुई संसदीय सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। श्री पासवान ने आज उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया। चिराग पासवान 2014 और 2019 में जमुई लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्होंने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे के समझौते में लोक जनशक्ति पार्टी आर पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। ओडिशा में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होगा। राज्य में कुल 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर आम चुनाव के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में मतदान होगा। चौथे चरण के मतदान के लिए 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 26 अप्रैल को पांचवें, 29 अप्रैल को छठे और 7 मई को सातवें चरण के मतदान को लेकर अधिसूचना जारी होगी। एक रिपोर्ट।
ओडिशा में कालाहांडी, नवरंगपुर, बहरामपुर और कोरापुट लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। इसके बाद बरगढ़, सुंदरगढ़, बालंगीर, कंधमाल और अस्का सीट पर 20 मई को पांचवें चरण में मतदान होगा। संभलपुर, केंदुझर, ढेंकानाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर की सीटों पर 25 मई को छठे चरण में चुनाव होंगे। राज्य में मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर की लोकसभा सीटों पर सातवें चरण यानी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इन लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर भी आम चुनाव के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार ही मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। राज्य भर में 37,809 मतदान केंद्रों पर 3,35,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। ये परामर्श मौसम विभाग के इस वर्ष मार्च से जून के दौरान सामान्य से अधिक तापमान के पूर्वानुमान के बाद जारी किया गया है। आयोग ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को साझा किया है। एक रिपोर्ट।
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान दलों और मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर ORS मुहैया कराया जाए ताकि ये लोग गर्मी के मौसम में लू से खुद को बचा सकें। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पीने के पानी के लिए नल की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही पेयजल के बर्तनों की पर्याप्त व्यवस्था भी करने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों के अंदर टेबल, कुर्सी और बेंच की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में अलग अलग शौचालय होने चाहिए। साथ ही लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए टेंट की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मतदाताओं और मतदान कर्मचारियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल किट की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती मतदान केंद्रों पर की जाए। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
चुनाव आयोग चुनावों के दौरान 27 IT एप्स के साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। एप्स और पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उपयोग ने उम्मीदवारों और लोगों के साथ साथ उन अधिकारियों के लिए भी प्रणाली को आसान बना दिया है जो चुनावी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। एक रिपोर्ट।
ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार नामांकन और शपथ पत्र दाखिल कर रहे हैं। उम्मीदवार बैठकों, रैलियों आदि के लिए अनुमति मांगने के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। मतदाता हेल्पलाइन ऐप VHA के माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मतदान केंद्र का विवरण देख सकते हैं और ई एपिक चुनाव फोटो पहचान पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। सी विजिल ऐप का उपयोग आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और समाधान के लिए किया जाता है। उम्मीदवार का शपथ पत्र एफिडेविट पोर्टल और KYC ऐप पर उपलब्ध है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पत्र सूचना ब्यूरो PIB ने लोकसभा चुनाव की कवरेज करने वाले मीडियाकर्मियों के लिए एक विशेष वेबसाइट pib.gov.in/elect2024/index.aspx शुरू की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फ्लिप बुक जैसी विशेषताएं हैं जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। मीडियाकर्मी चुनाव से संबंधित लेख लिखने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और अधिसूचना से संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि बालाकोट जैसे सैनिक अभियान ने यह प्रदर्शित किया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर एरोस्पेस पावर को शत्रु के क्षेत्र में प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। श्री चौधरी ने आज नई दिल्ली में भावी टकराव में एरोस्पेस पावर पर 15वें जम्बो मजूमदार एरोस्पेस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में अपने उद्घाटन भाषण में ये बात कही।
Attributes of high speed, reduced response time, long range, mobility, shock effect, ability to operate across domains and network-centric operations have made aerospace power a formidable component of nation's military might. Balakot-like operations have shown that, given the political will, aerospace power can be effectively carried out beyond enemy lines in a no-war, no-peace scenario, under a nuclear overhang, without escalating into full-blown conflict.
केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। श्री ठाकुर आज जम्मू के झज्जर कोटली में मीडिया से बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो महिला विद्रोहियों सहित 6 माओवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घटनास्थल से 6 माओवादियों के शव और बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। तलाशी अभियान जारी है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बासागुड़ा इलाके के जंगलों में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर थी। माओवादियों के साथ यह मुठभेड़ चिपुर भट्टी के पास हुई। यह इलाका सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित है। होली के दिन इसी इलाके में माओवादियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। सुरक्षा बलों की टीम इस घटना की जांच करने के लिए ही गई हुई थी, तभी यह मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 6 माओवादी मारे गए हैं। इनमें माओवादी संगठन का एक डिप्टी कमांडर भी शामिल है। मौके से सभी 6 माओवादियों के शव और बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने आज दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ मुलाकात की और उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित शासकीय पत्र भेजे जाने की शिकायत दर्ज कराई। श्री सचदेवा ने बताया कि भाजपा ने कथित सरकारी पत्रों के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। इस बीच श्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने एक वीडियो संदेश में कल अदालत में कथित शराब घोटाले के मामले में मनी ट्रेल पर से पर्दा हटाया। उधर दिल्ली विधानसभा के सत्र में आज आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों और पदाधिकारियों ने केजरीवाल के त्यागपत्र की मांग करते हुए विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने मार्च में सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षित करके बाकी एशियाई बाजारों को पछाड़ दिया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने दिसंबर 2023 के बाद से सबसे बड़ी खरीदारी में भारतीय इक्विटी में 3,63,00,00,000 डॉलर का निवेश किया। घरेलू संस्थानों ने 52,467 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 63 रनों से हरा दिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। दूसरे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, बालाकोट जैसे ऑपरेशनों से पता चला है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर एरोस्पेस पावर को शत्रु के क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। भारत ने इस वर्ष मार्च में सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षित करके एशियाई बाजारों को पीछे छोड़ा और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।